संतप्त मानस शांत मान जिनके गुणों के गान वर्धमान महान जिन बिखरे चित्र महामंडल विधान में जयमालाओं के माध्यम से सिद्धों की स्तुति का प्रकरण कर रहा है। जिसे हम जयमाला बोलते हैं, जयमाला का अर्थ ही होता है कि जिनकी पूजन हमने की है उनके गुणों का स्तवन हम करें। छंदों में तो हमको ज्यादा अवसर मिलता नहीं है, दो दो लाइन के छंद होते हैं, चार लाइन के भी हों तो कुछ बातें जलचंदन की महिमा में निकल जाती हैं, तो ज्यादा बात कहने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जयमाला के माध्यम से हम उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। और पहले जो हमारी देवसास गुरु की पूजन चलती थी उसमें भी देवसास गुरु के स्वरूप का ही वर्णन था जयमाला में। सरदार बिगल जी साहब ने पूजन बनाई तो उसमें उसके साथ में 12 भावनाएं भी उसमें रखी, और 12 भावनाएं रखने से देवसास गुरु का स्वरूप गौण हो गया और उसके वर्णन करने के लिए उतना अवकाश नहीं रहा, इसलिए वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो उसके एक साल बाद ही जब मैंने पूजन लिखी देवसास गुरु की तो उसने देवसास गुरु का स्वरूप स्पष्ट किया। यही उद्देश्य था कि जयमाला में देवसास गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो जाना चाहिए। वो तो लंबी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक पंक्ति उसमें आती है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर निदेही भावना। उसकी छाया आपने अभी जयमाला जो अभी आपने 500 अरग चढ़ाए उसमें देखी। उस वक्त मेरे से प्रश्न किया गया था कि आप साधुओं को सिद्धों के समान कह रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो मैंने यही दिया था कि सिद्धचक विधान के 7वें दिन के जो अंतिम 100 अर्घ हैं उन अर्घों में साधु के लिए ये बात आती है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। अभी आपने पढ़ा होगा ना, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे, कि हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि साधुओं के समान हैं, अथवा सिद्ध साधु कैसे हैं जो सिद्धों के समान हैं, साधु सम सिद्ध। तो उन्होंने कहा साधुओं के लिए सिद्धों की उपमा कई बार संतराज ने 250 वर्ष पहले दी। आप जरा सोचो कि जो उस व्यक्ति साधुओं को सिद्धों की पंक्ति में रखकर देखता हो, पंक्ति में तो है ही ना नवोकार मंत्र में, लेकिन उन्हीं के रूप में ही देखता हो, उनके हृदय में साधुओं के प्रति कैसी भक्ति होगी। इसलिए मुझे ये बात वहां पसंद आई और मैंने देवसास गुरु की पूजन में वो बात रखी। एक चीज और आप अभी पढ़ रहे थे जिसमें ये भाव था, साधक निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन। क्या था कि साधु कौन है जो निरंतर आत्मा की साधना करते हैं। क्या थी वो पंक्ति, क्या किसी को याद है? क्या हाँ, साधु भले शिव साधन हारे अघ मारे। साधु क्यों नहीं कहते हैं जो मोक्ष की साधना में 24 घंटे लगे रहे, जगत के उपकार में नहीं, जगत के प्रपंचों में तो रहना ही नहीं चाहिए। साधु भये शिव साधन हारे, शिव माने मुक्ति की साधना करने वाले साधु हैं, इसलिए सिद्ध भगवान की पूजन करने के साथ हम उनकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे आज के सिद्ध भगवान आज के सिद्ध हैं और वे कल के सिद्ध हैं। जिन सिद्धों की आप जो पूजन अभी कर रहे हैं, तो सिद्ध सलामत जितना सिद्ध विराजमान है उन सभी की है, किन्हीं को छोड़ दिया है? सोचना जरा गंभीर कर, सभी सिद्धों की है, इसको छोड़ दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी है। अभी आप आठवें दिन की पूजन करेंगे, कल से शुरू होगी, तो उसमें आप ध्यान से देखना, अपनी वर्तमान चौबीसी के नाम आए हैं और भूतकाल की चौबीसी के नाम आए हैं और भविष्यकाल की चौबीसी के नाम भी आए हैं। माने महापर्व जो तीर्थंकर अभी पहले नरक में है राजा चाणक्य जी, वो भी भविष्य में होने वाले सिद्ध हैं और उनकी भी आप पूजन कर रहे हैं। माने अकेले वही नहीं है नरक में, न मालूम भविष्य के तो अनंत सिद्ध है ना भविष्य में होने वाले, जिन्हें हमारा और आपका भी नंबर है, होगा नहीं है। माने आप अपनी भी पूजन कर रहे हैं, अकेले किसी दूसरे की ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकालवर्ती सिद्धों की पूजन है ना। तो अभी जो हैं तो भविष्य वाले तो अभी सिद्ध सलाह में मौजूद नहीं है। जितने आज तक सिद्ध हुए हैं अभी उसे अनंत गुण सिद्ध और होने वाले हैं, तो उतने की ही नहीं, जितने हैं उनसे अनंत गुण सिद्ध भी पूजन हम अभी यहाँ कर रहे हैं। अभी जयमाला है, कल से इतनी चर्चा चल रही थी कि आपने गुण तो बहुत हैं कि क्या गिनती करें, लेकिन हम तो अपनी भक्ति के बस अपनी श्रद्धा से जो कुछ बनता है वो कह रहे हैं। शिव गुणे श्रद्धा धारे उरे भक्ति भाव है सार, सिद्ध भगवान के गुणों की हृदय में श्रद्धा को धारण करके भक्ति भाव के कारण केवल निज आनंद कर, सिर्फ अपने आनंद के लिए ही मैं ये सिद्धों का गुणगान कर रहा हूँ, और दूसरों के लिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जब जाए तो ठीक है, नहीं जब जाए तो नहीं करना। हम तुम्हारे लिए, तुम गांव गांव में सत्तर विधान करो, इसके लिए हमने सत्तर विधान बनाया है, ऐसा नहीं। रामायण में तुलसीदास जी ने भी शुरू में ये लिखा है, तो तुम्हें रामायण क्यों लिख रहा था? तो उसने लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि तुलसी रघुनाथ की जो गाथा लिख रहा है वो स्वांता सुखाय अपने अंदर अपने सुख के लिए लिख रहा है, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा है। जो असली साहित्यकार होते हैं उस साहित्य लिखने में पढ़ने में बोलने में उन्हें खुद आनंद आता है, वे भाव से विभोर हो जाते हैं, वे अपने आनंद के लिए सब कुछ करते हैं, जगत का कल्याण हो जाए तो बहुत बढ़िया और ना हो तो ठीक। कुछ गुरुदेव जी कांजी स्वामी जब प्रवचन करते थे तो एकदम उसमें मस्त हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, उनका खिलखिलाता चेहरा देखकर कुछ लोग तो कहते थे कि ए, ए, ए जो प्रवचन में हंसना कोई अच्छी बात है, एक खिलखिला के हंसते हैं, प्रवचन तो गंभीर चीज होती है, क्यों ऐसा आरोप उन पर लगाते थे। तो प्रवचन कोई ऐसी चीज थी किसी का मरे का फेरा करने आए हैं, यदि प्रवचन में आनंद उत्पन्न करने वाली बात है तो आनंद अंदर में आएगा ना, अगर मन में आएगा तो चेहरे पर क्यों नहीं आएगा, वाणी में क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए ना। वे अपना उसमें मग्न है, क्या गजब है, क्या गजब है। कभी कभी मैंने देखा कि एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं और पहली पंक्ति से बोल रहे क्या गजब है, क्या गजब है। मैं कुछ बोलो तो का क्या गजब हो गया, फिर करना गजब। तो वास्तव में क्या करते थे, जब वो प्रवचन करते थे तो उस विषय पर घंटों पहले से उसका अध्ययन मनन चिंतन करते थे, अब वो उनके दिमाग में घूमता रहता था, तो उसकी महिमा से वो इतने गदगद होते थे प्रवचन करने के पहले ही वो ये शब्द निकलते थे, तुम समझते हो शुरू हो रहा है, उनका क्या, उनका तो कभी से शुरू हो गया। तो इसलिए जो हमने धर्म को ऐसा बना दिया है, कैसा रोने रोने वाला वो नहीं है, हमने अपने बनाया उदासीन आश्रम। और उदासीन आश्रम में जो रहे वो तो बिल्कुल रोनी सूरत वाला रहना चाहिए, उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना जरा काम से बस करो, उदासीन आश्रम से निकाल दिया जाएगा। मेले को पहले कपड़े पहनना चाहिए हैं, ना नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ना बोलना चाहिए बिल्कुल आधा पागल सा दिखे दूर से। अरे उदासीन का भी असली समझते हो तुम, सही बनारसी दास ने लिखा है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अकेली उदासीनता ही सुख की सहेली है। यदि उदासीनता आएगी तो अंदर में सुख होगा कि नहीं, और सुख होगा वो आनंद होगा तो आनंद चेहरे पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रोने का क्या काम। उदासीन का मतलब होता है कि जगत से उठकर आत्मा में आसीन, आसीन है ना, आसीन माने बैठना, कहाँ दर्द, कहाँ रमना, कहाँ रमना, और उठकर रमना, कहाँ से उठना, कि आज तक हम जगत में जम रहे हैं रम रहे हैं, वहां से उठकर अपने आत्मा में जमना रमना, उसका नाम है उदासीनता। प्रफुल्ल है अंदर, प्रसन्नता का चित्त का काम है। धर्म में जो जिसे अभी मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, उसे मोक्ष में जाए तो आनंद आएगा। तो वो कहते हैं मैं हे भगवान आपके गुणों का अनुवाद अपने केवल निज आनंद, आनंद लिखा ना कि मुझे आनंद आएगा, केवल निज आनंद कर, केवल ओनली, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नहीं जैसे किरणी साहब ने बहुत गलती है मैं सुधार देता हूँ, हमने अपने लिए बनाई गलतियां रहने दे, तुम अपनी अलग बना देना, कौन रोकता है तेरे को, तुम इतना बुद्धिमान है इतना समझदार है कि हमारे लिए अच्छी गलतियां सुधार सकता है, अपनी बना दे अलग, एक बार मैं बना नहीं सकता, मैं तो सिर्फ दूसरों की गलतियां सुधार सकता हूँ। मास्टर किसे कहते हैं जानते आप, जो जिंदगी भर दूसरों की गलतियां निकालते रहे, क्या उनके हाथ में एक लाल पेंसिल होती है और जब वे बच्चों की कापियां डांटते हैं तो बिल्कुल चुपचाप रहती है, जहां गलती दिखी वहां दंग जैसा मार, बिच्छू जैसा दंग मार देते, क्या उस दूसरों की गलतियां निकालते हैं, जिनकी गलतियां निकालते हैं वे अगली साल अगली क्लास में चले जाते हैं और वे उसी क्लास में रहते हैं, वे दस दस साल में एक क्लास नहीं बढ़ते हैं, कभी कभी सारी जिंदगी उसी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते निकल जाती है और सैकड़ों विद्यार्थी आगे बढ़ जाते हैं। अपनी गलती निकालो तो आगे बढ़ोगे, दूसरों की गलतियां क्या निकालना। जय मदन कदन मन करण नाथ, देखो ये सब किया करे घर पर बैठ के शांति से इसके अर्थ समझने की कोशिश करो, फिर देखो आप कितना अर्थ निकाल पाते हो, और तो आप ही निकाल लोगे और बाकी रहा था अगर हम निकालेंगे तुम्हारे दिमाग में वो घट जाएगा, जिंदगी का ध्यान जाएगा। क्या कह रहे हैं, हे भगवान तुम मदन कदन, तुम कामदेव का नाश करने वाले हो। क्या मदन माने कामदेव और करण माने उसका नाश करने वाली है, और मन करण नाश, मन और करण माने इंद्रियां, तो पांच इंद्रियों और मन का नाश करने वाला, नश नाश माने पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से जो भोग का भाव होता है उसका आप नाश करने वाली है। कैसे, जय मदन करदन मन करण नाश, जय शांति रूप, आप एकदम शांति स्वरूप हैं और निज सुख विलास अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास करते रहते हैं, उसे भोग के रहते हैं। जय कपट शोभत पट कारण सूर, आपने कपट रूपी सुखद सुखद जानते हैं योद्धा, और पट करना जानते हैं चित्त करना। आपने कपट रूपी सुखद को पट करें चित्त कर दिया है, इसलिए आप सूरवीर हैं, आप पहलवान हैं, आपने बराबर मैदान जीता है। अखाड़े में किसको ना कोई दूसरे पहलवान को जीतने की क्या होता है कि उसे यदि वो चित्त कर दे तो चित्त जिसे किया वो हार गया और चित्त करने वाला जीत गया। क्यों इतना ये नियम है ना, तो कहते हैं आपने इस अखाड़े में कपट रूपी सुभद को पट कर दिया, चित्त कर दिया, इसलिए आप सूरवीर हो। अकेले कपट को ही नहीं, किसान तो चार होती है ना। तो अगली पंक्ति में देखो क्या, जय लोभ और क्षोभ माने क्रोध और मद माने मान और दम, इनका भी आपने चूर्ण कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो रोहित तारों का दान है, जय कपट शोभट पट कारण सूर, जय पर परिशो आचंदन आचंद विमल सरही विशेष, आप पर परिणति से अत्यंत भिन्न है, ये बिल्कुल साफ है ना, और अपनी निज परिणति से अत्यंत अभिन्न है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न है। अत्यंत विमल सब ही विशेष, आपकी जितनी भी पर्याय हैं, विशेष माने पर्याय, वो अत्यंत विमल, उनमें रंग मात्र ही मेल नहीं रह गया, निर्मल हो गई है ना। मल श्लेष शोध राक्षोन शेष, रंच मात्र भी मल को आपने रहने नहीं दिया, सारे मल को शोध डाला है, न शेष, शेष माने बाकी, यहाँ वो शेषनाग नहीं है, तो ना शेष माने शेषनाग आएगा ना, इसे कहा आएगा है बन गया, कभी जय माल में आएगा दूसरी में से। चलो मन दीप सार निर्वघन ज्योत, त्रिलोक ये भगवान आप मणिदीप हो, कि मणिदीप मणि के दीपक में और अपन जो दीपक जलाते हैं घी का दीपक है, इसमें क्या फर्क है कि घी के दीपक में कुछ तकलीफें हैं, एक तो घी जलता है, मणि में कुछ जलता नहीं है, आखिर बहुत 200 रुपये किलो हो गया, कितना हो गया, फिर दूसरे उसमें धुआं निकलता है, फिर उसमें बाती की जरूरत है, बहुत बहुत तकलीफें हैं, लेकिन मणिदीप ऐसा होता है ना, धुआं निकलता है ना, कोई खर्चा होता है ना, कोई गड़बड़ नहीं होती है, ना तेल की जरूरत होती है। तो आप मणिदीप हैं, और जो वो दीपक की हवा ज्योति होती है तो हवा चले तो बुझ जाती है, तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, लेकिन मणि रूप का दीपक है उसकी ज्योति कभी कितनी भी तूफान चले बुझती नहीं है, और स्वाभाविक नित्य उद्योग हो और स्वाभाविक रूप से निरंतर जलती रहती है। ऐसी चर्चा भक्तांबर महाकाव्य में, भक्ति काव्य में भगवान को कहा है दीपो परत तुमसिनाथ जगत प्रकाशा, कि हे भगवान तुम जगत का प्रकाश करने वाले अपर दीप हो, अपर दीप हो ना, अपर क्लास होती ना, यही दुनिया उसे सर्वश्रेष्ठ दीपक हो, क्योंकि दुनिया के दीपक कैसे होते हैं, मेरे धूम बरसी रस दही सही ले पूरा कृष्ण जगत प्रेम दम प्रकृति करोती, गम्यो न जा तुमताम चलता दलानाम दीपो पर तमसीनाथ जगत प्रकाशा, निर्धूम जगत के दीपकों में धुआं निकलता है, तुम ऐसे दीपक हो के धुआं नहीं निकलता है। बर्फी रफ बर्जित, उसमें बत्ती डालना पड़ती है, और तुम ऐसे दीपक हो के बत्ती नहीं डालना पड़ती है। तेल पूरा, उसमें तेल भरना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे दीपक हो उसमें तेल नहीं भरना पड़ता है। मेरे धूम बरती रफ बर्जित तेल पूरा, और वो क्या है कि जराओ इतनी मेहनत करो और एक लिमिटेड एरिया को प्रकाशित करती है, और तुम सारी दुनिया को प्रकाशित करते हो। कतुहनम जगत, तीन लोक के सारे स्थानों को प्रगति करो सी प्रकट करते हो, और यहाँ जरा सी हवा चला तो दीपक बुझ जाता है, और तुम प्रलयकाल में जैसी आंधी आती है, जम्यो न जाति मरुतम अचला नाम तला, इन पर्वतों का नाम है अचल। क्यों है? क्योंकि ये चलायमान नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे तूफान आए कि ये अचल पर्वत भी चलायमान हो जाएं। क्या कहते तो अचल है लेकिन चलायमान हो जाएं तो भी तुम बुझते नहीं हो, ऐसे अपर दीपक हो तुम। दीपो परत्वमसिनात जगत प्रकाशा, तो ऐसे भगवान यहाँ दिखा माने दीप निर्विघ्न ज्योत के शिखर अब दीपक कहाँ कहाँ उजाला करता है, भगवान जिस कमरे में उजाला थी उस कमरे में दीपक करता है, उजाला करने जाता है। और कुछ लोग ये अजीब होते हैं, तो कमरे के दरवाजे पर दीपक रख देते हैं, तो कमरे में भी करता है और आंगन में भी करता है। आंगन तो समझते हैं वाटर, तो आंगन वांगन खत्म ही हो गया ना, बोलते तो देवी का दीपक, देवी में दिल्ली का नहीं, देवी का दीपक, देवी का दीपक का मतलब घर की देहरी पर रख दिया तो कमरे में भी उजेला और आंगन में भी उजेला। तो अभी हमको चाहिए, आजकल कुछ लोग या लोग होते हैं ना लेटरन बाथरूम में थोड़ा सा जगह खाली करके और एक लट्टू लगा देते हैं, उसके लेटरन में भी उजेला और बाथरूम में भी, क्यों दो नहीं लगाना चाहेंगे। और तो अब जितना बड़ा हम बहुत तेज लट्टू लगाते हैं तो उतना ऊपर लगाते हैं ना कि सारा जगत इसमें प्रकाशित हो जाए। तो भगवान तुम इतने महान दीपक हो कि तीन लोक शिखर राजत, तुम्हें तीन लोक के ऊपर सिद्ध सलाह में बैठे जाकर के, तो वो दीपक वहां क्यों रखे तुम जाके बैठे, यहाँ कोने में क्यों नहीं बैठे। त्रय लोक शिखर राजत, और ऐसे तुम दीपक हो तो तीन लोक के शिखर पर जाके तुमको रखा तो तीनों लोगों में उजाला करोगे। त्रिलोक के शिखर राजत अखंड दीपक, बुझा नहीं कभी, क्यों जलाते ना अखंड दीपक, फिर ऐसे अखंडों के अनंत काल तक जलते रहोगे, फिर कभी बुझने का नंबर नहीं आएगा। त्रिलोक के शिखर राजत मुनि मन मंदिर को अंधकार, जितने दीपक हो कितने ही बड़े बड़े बन गए ना आजकल, रात में खेल खेलते हैं तो ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा देते हैं, तो वो गेंद आती हुई दिखती है ना, कितनी तेज लाइट कर देते हैं तो उतने ऊपर लगाई तो। लेकिन ऐसा दीपक बताओ मुझे कोई आज तक कि जिस तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान अंधकार है उसका उजाला कर देता हो, उस अंधकार को नष्ट कर देता हो, ऐसा दीपक कोई है? सूरज की ये विशेषता है कि जहाँ उसकी किरण जाती है वहां तो वो उजाला करता ही है, अंधकार का नाश करता ही है, लेकिन जहाँ किरण नहीं जाती है वहां नहीं करता। यहाँ का भी उजाला नष्ट किया ना अंधकार, यहाँ तो किरण नहीं आई ना, और तलघर में चले जाओ तो वहां का भी, यानी तलघर में हम गए और हमें मालूम पड़ता है कि दिन है कि रात, इसका मतलब सूरज की किरण वहां पहुंची, सूरज का उजाला वहां पहुंचा है ना। लेकिन وہ سورج کسی کے من میں اندھکار ہو تو اس کا ناش نہیں کر سکتا ہے. لیکن تم تو اتنے مہان ہو کہ ہماری دعائیں تو جانے دو, منیوں کے من میں کوئی اندھکار ہو, منی من مندر کو اندھکار ہے نا, ایک جگہ ہو رہا تھا منی من سمے کیسا ہے دنیا میں بہت دنیا کی اتمائیں دیتے تھے ہنوان کی, لیکن انہیں کوئی پوترتا کے لیے یعنی کوئی اپما دکھائی دی تو منیوں کا من کتنا پوتر ہوگا, منیوں کا من کہ کبھی کو اس سے بڑھیا کوئی اپما سوجھ نہیں سوجھی. اور یہاں بھی انہوں نے کہا منی من مندر کو اندھکار کس ہی پرکاش سو نسک سار, ارے تمہارا سمرن کرتے ہیں تو میں کون ہوں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہو تو تمہارا سمرن کرنے سے مم سوروپ ہے سدھ سمان ایسا ان کے خیال میں آ جاتا ہے تو ان کے من میں آنے والا اندھکار نشٹ ہو جاتا ہے نا. اور جو لوگ اس کو سہج بھاؤ سے پراپت نہیں کر پاتے ہیں تب وہ انت کال تک سنسار میں گھومتے رہتے ہیں نا. جو سرل روپ پال ہے نارت کشکان بہت بہت بھرنے ہیں, جو الپ کال میں ہو جو کلپ کال کے بعد اور کال کے بعد جنہیں موک جانا تھا جنہیں موک جانا نہیں ہے ایسے ابھد تو تمہاری کرپا بھی ہو جائے تو ابھی وہ کبھی موک نہیں جائیں گے, جنہیں بہت سال بعد جانا ہے وہ تمہاری کرپا سے تمہارا دھیان کریں تو الپ کال میں کلپ کال کی جگہ الپ کال آئے تکن آیا تمہیں چھن دھیاور چھن بھر کو دھیان کریں تو وہ موک میں چلے جاتے ہیں. یہ سب ویوہارک کتن ہے اور ایک ایک جیو کا ایک ایک سمے نکی ہے, ایک سمے پہلے کوئی جا نہیں سکتا اور ایک سمے بعد کوئی رک نہیں سکتا ہے, اگر بھکتی کرتے ہیں تو جو اس میں گن ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں اور جو گن نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں, اسی لیے بھکتی کو اندھی کہتے ہیں. کیا جو بدھی ہے وہ جان ہے وہ سرکار نہیں کرے گا, ایک سمے پہلے کبھی نہیں ہو سکتا کیوں, تو اسی ویوہار کو سمجھ لینا ہے. بھبی پتی تن کو بھبی جیووں کا پتی بھبی جو ہے پتت ہے دو طرح کے بھبی, ایک تو بھبی اور پتت گرے ہوئے پت ہیں, یہ تو بہت جانے لائے لیکن ابھی پتت ہیں کبھی بولتے ہیں پاون میں سنا پربھو پتے پاون میں
کیا بولے
پربھو تو پت پلے تو میں پاون ہوں یہ پڑھو پربھو پتے پاون میں
کیا ہے
پربھو پتت پاون ہے پتتوں کو پوتر کرنے والے ہیں اور میں اپاون ہوں تو میرے کو بھی پوتر کر دیں گے. یہاں کہتے ہیں جو ہے نا میں کہاں پڑھ رہے تھے بھو پتن کو ادھار ہے تمہارا جو نام ہے وہ ہستا بلند ہاتھ کی لاٹھی ہے. ہاتھ کی لاٹھی کا منتر کیا ہے کہ یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں لاٹھی دے دیتے ہیں, ہاتھ کی لاٹھی چلنے میں کھڑے ہونے میں کس کو سہارا دیتی ہے, جس کے پیر ہوں سمجھے نا اور کمزور ہوں, اور جن کے پیر ہی نہ ہوں اور ان میں کوئی دم ہی نہیں ہو جیرو ہو گئی ہو انہیں لاٹھی کام نہیں آتی تھی, بندوق کس کی رکشا کرتی ہے جو مضبوط ہو مضبوط ہو, اور کمزور آدمی بندوق لے گا تو سامنے والا کھینچ کے اس کو ہی ختم کر دے گا. تو بھگو جیو جو ہیں ان کے ہاتھ کی لاٹھی ہے وہ ہے نا سدھ بھگوان تو میں گنے سمرن سا राशि भगोदधि को संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहे तो उसके लिए कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना उद्यम मन प्रसाद करना चाहिए, तो वो संसार समुद्र से पार हो जाएगी, है ना। कहते पारे ना दिशा उद्यम प्रवाह, उसका जितना भी उद्यम है, प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो बिकार जाने वाला है, क्योंकि वो अभव्य है। जिस प्रकार अभव्य जीव कितना ही पुरुषार्थ करें उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। वास्तव में तो अभव्य जीव मोक्ष के जाने लायक पुरुषार्थ करते ही नहीं है, ये तो कल्पना की बात है, समझ में ना। तो कहते हैं उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का स्मरण रूपी सागर अथाह है, उसमें जनधर शरीर के लोग भी पार नहीं पा सकते हैं। जनधर शरीर से न पार पाए, जनधर शरीर के लोग भी उसके पार को नहीं पा जा सकते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश कैसी है, जैसे अभद्रों की मोक्ष जाने की कोशिश। क्या उपमा दिए, देखो मैं जो तुम्हारे भगवान की भक्ति कर रहा हूँ वो कैसे कैसा कैसा नादानी भरा काम है कि अभद्र जीव मोक्ष के लिए जो प्रसाद करेगा वो सही होगा ही नहीं ना। ऐसा मेरी जो भक्ति आपके लिए की जा रही है इसमें कुछ दम नहीं है। तुम ये मत देखना तो मैंने क्या कह दिया और तुम मुझे साफ से विचार करो, ये मैंने कहा नहीं तो मैं जानता हूँ और मेरे को नहीं जहा जाता तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं है ना। हमें होश भी नहीं है कि हम की प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो साहब धर्म सिंह जी शेखावती थे ना बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत गजब, बहुत बढ़िया थे। भैया थे जब मेडिकल कॉलेज में फर्जीगंज के नीचे कोई भर्ती नहीं होता था, लंबी लंबी लाइन लग रही थी और मेरा बच्चा तो मैं सेकंड डिवीजन भी नहीं था, थर्ड डिवीजन था। मैं उनके पास गया, सब बैठे रह गए और मेरे पहले लड़के को भर्ती करा दिया। कितने महान थे, बोल अखबार में छपाया स्थान पत्रकार में, ये उनकी निंदा है कि प्रशंसा, इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है। अरे उन्होंने अच्छे अच्छे योग्य लड़कों की जगह नहीं करके और पक्षपात करके अयोग्य लड़के को भर्ती करा दिया, ये प्रशंसा आयोग की बात है या निंदा आयोग की बात है। हमारा तुम्हारे हिसाब से दुनिया में अच्छा काम नहीं होता, प्रशंसा तो वो होती कि साहब मैंने इतनी कोशिश की, सब बताया, इतने रुपया रखे उनके सामने, सिफारिश में लेके गया, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए, ये होती प्रशंसा। तो क्यों ऐसा इससे क्या लेना देना, भगवान तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये सब एक झूठ क्यों बोलते हो भगवान के सामने। भगवान कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये नहीं हो कि भगवान कुछ करते ही नहीं है। क्यों हम धोखे जा रहे, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रटायो, अंजन से किए अकांक्षी। सीता के प्रति कमल लटा दिया, कितना वही भगवान की बात कर रहे तुमने, आदिनाथ की महादेवी एक बता दो मुझे, किसने किया था ये काम। यदि महावीर की बात करते हो तो जब सीता जी के संकट आया था तब महावीर थे ही नहीं, न मालूम कहां नरक निगोद में पड़ गए। द्रौपदी के समय भी नहीं थे, क्यों एक नैमिनाथ भगवान के समय की घटना है, एक मुनिष्वर नाथ के समय की घटना है, एक ही आदमी दोनों काम कैसे कर सकता। क्या बिना अब तो कोई चक्कर नहीं है कि मोक्ष चले गए थे और मोक्ष में कोई आता नहीं है और वहां जाने के बाद कुछ करता नहीं है, तो सभी झूठ बोले जा रहे, शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए। हमने कभी पुराने हम पुराने कमियों से लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। तुम किसी का नाम नहीं लो, जैन धर्म में एक दुभार नाम का खाता है, बच्चा खाता बोलते हैं, फिर भक्ति नाम का खाता है, देखो घबराना नहीं। उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से उन्हें प्रमाण के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कुछ किया कहीं भी लिखा हो तो समझ लेना वो सफेद झूठ है, वो व्यवहार में से ऐसे भक्ति के आवेश में कह दिया है। बहुत गजब है जैन दर्शन, और चोरी छाती करके इसे समझना पड़ेगा, इसे समझ में नहीं आएगा, जमा है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जिन मुख्य द्रह सो निकल बोलो, यहाँ बात खत्म नहीं है। जगत में गंगा को तीरथ कहते हैं, ठीक है ना। जगत में गंगा को तीरथ कहते हैं, तो गंगा को तीरथ क्यों कहते हैं? जैन धर्म में उसमें क्या है? जैन धर्म में दिनवाणी को गंगा की उपमा दी गई है, हैं? कहाँ दी गई है? ठीक है ना। जीरे हिमाचल तेने किसी मुख हाँ बोलो बोलो सारद गंग नदी, सारद माने दिनवाणी, वो गंगा नदी है। अब वो कहते गंगा नदी हिमालय से निकली, तो कहते भगवान महावीर के मुख रूपी हिमालय से निकली। हिमालय अपने यहां से गंगा नदी निकली ना, सात वाली गंगा, ये आज की हिमालय वाली नहीं। वो कहां से निकली है? हिमवान नाम के पर्वत से। हिमालय हो गया, पहला पर्वत है हिमवान नाम का पर्वत, और उसमें है तालाब हिरदा। हिरदा बोलते हैं बोलो सत्ता पर्व महापर्व संयुक्त हिरदा 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 माने तालाब। तो देखो इसे पढ़ो, देखो पश्चिम लिखा है, कोई हृदय लिखा है। जिनने मुख द्रह हृदय माने हृदय है ना, जिनके जिन्हें भगवान के मुख रूपी तालाब से निकली है, और अभंग इसमें एक तेज नहीं है, जरा सीधी निकली अति वेग रूप सिद्धांत गंग, वो सिद्धांत रूपी गंगा बहुत तेजी से बही। हाँ, जो भगवान महावीर के मुख रूपी तालाब से निकल के और तेजी से बही। अभी देखिए गंगा आजकल कितने मैली होगी, राम देवी गंगा मैली हो गई ना, ये गंगा मैली क्यों हो गई? तो कहते हैं कि गंगा के किनारे बहुत नगर बस रहे हैं। लोग कहते तो ऐसा है कि बनारस के पास से गंगा निकली, कहते हैं ना इलाहाबाद से गंगा निकली, फरुखाबाद से गंगा निकली। भैया गंगा तो अपने ताल से जहां जा रहा था वहां से निकली गई है, उसके बाद में ये नगर गंगा के किनारे बस गए। गंगा उनके किनारे नहीं गई, ये नहर नहीं है गाँव बुद्धिपूर्वक किसी गांव में ले गए, बल्कि ये गंगा तो अपनी चाल से निकली और उसके किनारे नगर बस गए, क्योंकि पानी की बढ़िया सुविधा थी, तो लोगों को सुविधा पानी की चाहिए थी, तो उसके किनारे नगर बड़े बड़े नगर बस गए। बनारस के पास से गंगा नहीं निकली, गंगा के किनारे बनारस बसा है, समझ रहे ना पहली बात तो। अब ये बड़े बड़े नगर बस गए तो ये तो नियम है कि पानी हमेशा निचली भूमि पर रहता है, तो उनके किनारे पे बसे तो वहां से पानी बह के सारा पानी कहां गंगा में तो जाएगा, तो सारी नलियां सारी गंदगी किनारे पर बसे हुए लोगों की गंदगी वो बह बह के नालियों के माध्यम से गंगा में गिरती है, तो गंगा में भी हो जाती है। अब समझ लो कि वहां से गंगोत्री से निकली, वहां गंगा का पानी दे उतना साफ होता है, नीट एंड क्लीन। और फिर बंगाल की खाड़ी में जाते जाते क्या हालत हो जाती है ना। अब वो गंगा की धारा वहां से निकली तो वो गंगा की धारा पवित्र वहां तो है, लेकिन बाद में जो बीच बीच में लोगों ने गंदगी डाल दी तो अब तो वो अपवित्र हो गई ना, हाँ वो तो गई, लेकिन एक इंतजाम प्रकृति ने उसमें किया है, کہنا کیا ہے کہ ہمیشہ پانی میں لہریں اٹھتی رہتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں لہریں, کہ جو شہروں کی گندگی آتی ہے تو اس میں بہت سی گندگی کو جو بدندار ہوتی ہے نیچے جمع دیتی ہیں, اور جو ہلکی گندگی ہوتی ہے اسے کنارے پر پھینک دیتی ہیں. اس طرح بیچ گنگا کی جو دھارا ہے وہ پوتر بن جاتی ہے. کیا کنارے کنارے پر گندگی دکھے گی کیونکہ شہر کی نالیاں پڑتی ہیں, تو بدندار گندگی کو نیچے جمع دیتی ہیں وہ لہریں اور اس کو پھینک دیتی ہیں, تو اس طرح وہ گنگا پوتر رہتی ہے. تو بھگوان مہاویر کی بانی روپی گنگا 2500 پہلے نکلی تھی اور گوتم بدھ کے کنڈ سے نکلتی اب یہاں بیچ میں بہت راگی دیسی جیووں کے بیچ میں سے پاس ہوئی. اس کے کنارے بچتے ہیں راگی دیسی جیو, اور انہوں نے الٹی سیدھی گپیں اپنے نام لکھ کر مہاویر کے نام پر چھوڑ دیا. مہاویر نے ایسا کہا میں بندے ٹوڈا مل پر ڈسکس کر رہا تھا تو میں ادے پور گیا, تو ادے پور میں ایک کتاب ملی مجھے بہت پرانی چھپی تھی جی ایک دم جرجر تھی, اس کا نام تھا مٹھاتو کھنڈن. اور مٹھاتو کھنڈن نامک کتاب میں نے پڑھا تو وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں سب کتابیں, ایک جمبو دیپ دیپن میں سار بھرت چھیتر تام سکھکار ایک سمے بولا تل تیر سمو شرن آیو مہاویر. راجا سینک گئے اور انہوں نے پوچھا مہاراج آج تو مجھے نند کمار کی کہانی سننی ہے, اور مہاراج نے سنانی شروع کر دی. ہر جگہ ہم کہانیوں میں ایسا لکھا ہوگا, اس میں کیا لکھا تھا کہ راجا سینک نے پوچھا کہ اس پنچم کال میں کتنے برس بعد متھاتو کا پرچار کون کرے گا, تو بھگوان مہاویر نے کہا کہ جے پور نگر میں ایک پنڈت ٹوڈر مل نام کا پنڈت ہوگا, اس تیور مٹھاس کا مٹھا. جو کچھ بھی اپنے کو ٹھوکنا ہو ٹھوکو, اور یہ کہہ دو کہ راجا سینک نے پوچھا تھا اور بھگوان مہاویر نے کہا تھا. اور دیکھیے وہ کہانی کس سے, جو ہر کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, جہاں سے بھٹار کو نے ہزاروں کہانیاں لکھی تو پڑا پورا کتھا ساہتیہ سمجھے نا, تو اس میں اس سب میں اسی اسٹائل سے سب باتیں ہیں. اب دے تو ہو گئی شاست کیونکہ بھگوان مہاویر نے کہی تھی, اور تب تو سوتر میں کہیں نہیں لکھا, بس سمر سنگان چار پرانی سے شروع ہو گیا سمے سال پنڈت سے کتابیں ہو کے رہ گئی, یہ پنڈ پنڈ کی بن کے رہ گئی سمجھے نا, یہ رما سوامی کی ہو کے رہ گئی. ہم نے سات سرٹیفکیٹ کی اپنی بات اپنی طرف سے لکھ دی تو ہماری بن کے رہ گئی, تو جو اصلی شاستر تھے وہ تو کتابیں بن کے رہ گئی. پھر ہم نے کیا کیا, روزینا پار کرنے کے لیے گٹکے میں چھپا دیے چھوٹے چھوٹے اور جیب میں رکھ لیں, یہ تو گٹکا بن کے رہ گئے اور بے اور ہست لکھے پٹھے سے شاستر ہو گئے. تو اب اس میں ایسا ہوا ہوگا بھگوان مہاویر سے لے کے آج تک کتنے گندے لوگوں نے اپنی گندگی جنوانی ماتا میں ڈال دی ہوگی, تو ہم آج کیسے مانیں کہ جو تم کہہ رہے وہ بھگوان مہاویر کی بات ہے اور جو بغیر پڑوسی کہہ رہا وہ بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پرشن ہے سارے وشو کے سامنے, اس میں بہت چرچا ہوئی ہے. سنت رام جی نے اس کا جواب دیا کہ فرق اسی میں پھنستے ہیں. جن مکھ در سون کے سات دھنگ کلو اس میں سات لہروں کی سپت بھنگ سپت بھنگی ہے نا کی لہریں اچھیں گی, تو وہ لہریں گندگی کو نیچے دبا دیتی ہیں اور کنارے دبا دیتی ہیں. کوئی بات ایک انت کی کہی ہو تو ہمارے یہاں تو سات بھنگ ہیں, کبھی کدھر جلسی کبھی جناسی کدھر چلے گئے ہے نا, ہمارے ایک نئے سے ہے نئے کے کھاتے میں ڈالو سب کے شدھ بات آ جائے نشچے نئے کی بات ہے اصلی بات ہے گندگی آ جائے تو ویوہار نئے کی بات ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں ہے لکھا نا سپت نئے سپت اور سپت بھنگ سات بھنگ اور سات نئے ان کی کلولوں سے وہ تین لوگ میں بہ رہے اور اس کی وجہ سے وہ شدھ ہوتی ہے. آتا نا اس میں لکھا ہے اس کی جیمال اتنی لمبی ہے چار گھنٹے بولو کبھی ختم نہیں ہوئے. کیا لکھا ہے یا با گنگا بجنے کلول بملا. زیادہ لمبا ہی دقت ہو جائے گی. یدی یا مانے ہے بھگوان آپ کی جو بات گنگا مانے بانی روپی گنگا ہے وہ کیسی ہے بجنے کلول انیک نیوں کی کلولوں سے بملا. کیسی ہے وہ کملا نہیں ہے جملا ہے. نیوں سے اس کا مل چھپیرا ہے اس لیے وہ بمل ہے کلول بملا کہ. اور تو وہ ہوگی اب ہمارے سامنے آ تو نہیں ہے کہ دانی مپے دان گرجن مرا لئی پرستا ابھی ہے. اتنے کو دکھائی نہیں دیتی ہے کہ بگلوں کو دکھائی نہیں دیتی ہنسوں کو دکھائی دیتی. بدھ جن مرا ہے بدھیمان لوگ جو ہنس ہیں ان کے دوارا وہ پرچت ہے. تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے تو ہم کیا کریں. تم اپنے آنکھ میں چشمہ لگا کے جا کے دکھاؤ جاتے تو ہے نا کیا ہوگی. پھر میں سبد بھر میں کلور مان ہوگی نا. اب آگے سو دوارانی تو آنے دادا سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو تاتے ہیں جگ تیرت اس لیے گنگا کو تیرت کہتے ہیں. تاتے ہیں جگ میں تیرت سدھام کہلاؤ ہے ستیارتھ نام اس لیے اس گنگا کو تیرت کہتے ہیں. تمہاری نروانی ندی گنگا کو ہم تیرت کہتے ہیں. دیکھ صاحب گرو نے صاحب ہے نا سو تم ہی سونے وہ تو گنگا ہے وہ تمہاری وجہ سے سدھارمان ہے. وہ جنوانی گنگا میں شدھوں کا سوروپ بتایا ہے بھگوان آتما کا سوروپ سمجھایا ہے اس لیے سوہا ہے. اور نہیں تو کیا ہے گنگا میں وہ پانی ہے نا وہ نرمل ہے. ابھی تو ساری دنیا میں پانی کی کیا کمی ہے. سمندر میں بھی پانی ہے نہ پر جب سمے سو بڑھے تو ٹھیک نہ تر میں نے بندر کھنڈی سب دے تو ایسا کروں نہ تر میں ایسا کروں گا نہ تو تم کیا کرو گے نہ تر سمجھے نا ان تھا پانی بہتا ہے انڈیا کا بھی پانی بہ نہ سر جل سم تو بہ تو ٹھیک بہتا ہے ٹھیک ہم کیا کریں کہ پانی میں جین تنتر جان ہو تو ٹھیک ہے نیندر بکتے ہیں انہوں نے بہت اچھا بکتا ہے کیوں یہ وہ جنوانی کی بات کہے تو بکتا ہے نیندر بکتا ہے آگے نا نیندر پر ہت اپنا اور پر ان دونوں کا ہت کرنے میں وہ آتمبھوت ہیں. لکشن دور کا بولتے ہیں آتمبھوت اور آتمن سچا ہے نا. جب سے ہے جب سے وہ ہوا ہے تب سے ہی وہ آتما اور پر کے کلیان کے کارن ہے. جو مہا اگنی داہ نیتن سمرس اگنی کی جلن کو مینٹنے میں سمرتھ کون ہے. کہ جو مہان مہاسک بہت ٹھنڈا جو پانی کا پربھاؤ ہے میں نے برف مہاسک ہمت برف بھی ہوتا ہے ٹھنڈا جو برف ہے وہی جلن کو دور کر سکتا ہے. اسی پرکار آپ سوئم مہا منگل سوروپ ہیں وگھن وناشن وگھنوں کو نشٹ کرنے والے ہیں اور سہج روپ ہیں. سنت کی تم سنت کبھی کہتے ہیں کہ جو ویکتی دین بھی ہو لیکن تمہاری بھکتی میں لین ہوگا, مانے تمہارا سلوک سمجھ کر تمہاری بھکتی میں لین ہوگا تو نشچے سے وہ پروین تنوانے مکھی دل کی پراپتی کرے گا. اس لیے میں من متن کاہے سے بھاووں کو دھارن کر کے پھر سدھ تمہیں نمسکار کرتا ہوں. جو تمہیں دھیان بھاو سو اتنی بڑھیا بات کہی ہے کہ اگنی میں سونے کو ڈال دو تو اگنی سونے کو سدھ کر دیتی ہے, چلے دی کہ وہ شدھتا سونے میں پہلے سے ہی پڑی ہے. اگنی کے سنیوگ سے سونا جو پہلے سے ہی شدھ ہے وہ پریت روپ پریا میں شدھ ہو جاتا ہے. میں اگنی نے اس میں شدھتا نہیں لائی, یعنی وہ سونا پہلے سے شدھ نہیں ہوتا تو شدھ نہیں ہوتا. تو اگنی پاک سنیوگ اگنی کے پکانے کے سنیوگ سے شدھ سورن اپار سونا شدھ ہو جاتا ہے. اسی پرکار تمہارے کو دھیان سے دھیاویں تو میں اپنا بھاو جو میرے اندر میں شدھی پڑی ہے میں اسے پا لیتا ہوں. تمہارا کچھ جانے والا نہیں ہے, تم یہ مت سمجھو کہ تم میرے کو سمجھا دو گے اور میں ابھی سکھی ہو جاؤں گا تو تمہارا سکھ میں تھوڑا بہت چھین لوں گا. وہ تمہارا پورا سکھ تمہارے پاس رہے گا, جو میرے کو سکھ ملے گا وہ میرے اندر جو سکھ کا کندھا آتما ہے وہ اس میں سے ملنے والا ہے. ایسا لوگ میں ہوتا ہے نا, بہت پنڈت لوگ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. گھبرانا نہیں, کیا کہتا ہوں, آپ ہماری سنستھا کو دان دو گے تو آپ کی دن دونی رات چوگنی بڑھے گی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا, میں مورکھ پنڈت ہوں نا. آپ نے 1,00,000 روپیہ ہمیں دیے تو آپ بڑھیں گے کیسے, 1,00,000 گھٹیں گے آپ کی روکنے سے. میری سر نہیں ایسی بات کہنے والا ریٹی پنڈت میں لگا دنیا میں, تم دور جائے مت دو, کبھی تمہارے سامنے ہاتھ کھول کے آئے گا نہیں, آئے گا تو یہ نہیں کہہ سکے گا. پھر گھٹتے ہیں بڑھتے کہاں ہیں, بدھو بناتے ہیں. نہیں وہ تو آپ پنیہ بندھے گا پھر وہ ادے میں آئے گا. اب اس میں کتنے کتنے چکر ہیں, ایسی تیرے کو اس میں ابھیمان نہیں ہوگا, تم نے بہت پوتر بھاؤ سے دیا ہوگا تو بندھے گا کہ نہیں بندھے گا کوئی ٹھکانا نہیں, پھر کب ادے میں آئے گا اور کب ملے گا. کیوں اگلے گھم میں دوسرے گھم میں اگلے گھم میں موک چلا گیا تو کیا ملے گا, نرک میں چلا گیا تو کہاں ملے گا. وہ سارا پنیہ پاپ روپ سنکرمت ہو جاتا ہے نرک میں, جاس چلا جاتا ہے نا بیج بیج والا. کون دے نہیں دے گا تو نہیں دے گا, سب نہیں پتا ہے گروانی میں جو بات ہے کیا. تو وہ کہتے ہیں دے گا, ارے اتنا ملے گا اتنا. تو ہم کہتے ہیں کہ یدی یہ چیز اچھی ہے ہم چوگنی ملے گی نا اس لیے دینے کو بولتے ہو نا, تو ہم دیں کیوں. اب ہم تو یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ جان کے چاہتے ہیں نا, تو ہمیں چوگنی ملے تو ہم تو چوگنی اس سے تو اچھا دے رہے ہی نہیں, کیونکہ اتنے سے ہم نہیں نبٹ پا رہے. دیکھو کیا کہتے ہیں, دیکھو یہاں ایک کامی کلوٹی پتنی کا تیاگ کر دو گے بھرم سے ہی لے لو گے تو دیو جا کے ہو گے تو کم سے کم 32 دیو انگنا ہے تو گارنٹی سے ملیں گے. جیسا لوگ دیتے ہیں آپ کو دیتے نا پنڈت, تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک صحیح پڑے اور کم سے کم طلاق کی ویوستھا تو ہے اور بندے کو تو چھٹکارا ملے گا. وہاں دے بچی میں پہنچ گئے تو کم سے کم 32 ایک کو بھی طلاق نہیں دے سکتے اور سینکڑوں بس لاکھوں بس ساگروں پر بھی بچے بھی مر کے بھی بندے مر کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. بہت پریشان ہوں گے تو جہر کر کے کیا پتنیاں صاف کرنے کے لیے پتنی کو چھوڑنا. لیکن تو ایسا نہیں ہے, وستو کا سوروپ تو جو ہے تو ہے, دھوکے میں जो तुम्हें ध्यावे भाव तो भावे कर स्वर्ण सुवर्ण सोने को अग्नि कुछ नहीं देती है, वो तो सोने में ही शुद्धता है, वो प्रकट हो जाती है। ख्याल में आए ना, यदि उसने जलाया है अग्नि ने तो सोने को नहीं जलाया है, विकार को जलाया है। ऐसे ही भगवान तुम भी हमें कुछ देने वाले नहीं हो, हमने जो अनंत सुख आएगा वो हमने से प्रकट होने वाला है। जैसे अग्नि निमित्त है ऐसे आपको निमित्त मात्र।